मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। आज 18 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 15 दिन की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है अक्षय लाल राय, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो अक्षय, आपका भी मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर से मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि जो स्टूडेंट भोपाल में क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे हैं उनसे मुझे आप थोड़ी सी बातचीत करने का अवसर दें, और इस तरह से ऑडियो के माध्यम से बातचीत करने का यह अंतिम अवसर है। फिर तो हम लोग रविवार को आमने सामने ही बातें कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि उनकी मानसिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से निर्मित हो जाए तो सामान्यतया मुझे ऑडियो से भी बातचीत उनसे करनी होती है। कल फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों की यात्रा की शुरुआत कराई थी और कल मैंने अपनी बात यहां समाप्त की थी कि अब आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है और आप यात्रियों से जो आपके साथ हैं उनसे घुल मिल रहे हैं। यहां मैं एक थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, और आप ही में से एक मित्र ने ईमेल के जरिए मुझे सूचित किया और वो बहुत सही बात थी, और वो ये कि कल मैंने आपसे कहा था कि जब आप भोजन शुरू करें तो सामने वालों से भी पूछ लें कि भाई आप भी भोजन खाना चाहेंगे क्या, शेयर करना चाहेंगे क्या, और दूसरे जब आपसे पूछें तो आप उनके साथ शेयर करें, आप उसमें से ले लें। उन्होंने सतर्क किया कि सर, इस तरह के गिरोह होते हैं जो इस तरह के भोजन गलत भोजन करा देते हैं और उसके बहुत दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं, तो मुझे यह बात सही लगी। तो मित्रों, मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूं, और प्लीज जब भी आप सफर में हो तो खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। एक तो फालतू की चीजें ना खाएं, खासकर जो स्टेशन पर बिकती रहती हैं, अपने साथ ही अपनी चीजें रखें, या फिर जो थाली बंद पैक्ड थाली आती है जो स्टेशन वालों की ही होती हैं, यानी कि रेलवे वालों की होती हैं, वही लें, या फिर अपने घर से लेकर के चलें ताकि तबीयत खराब न हो। और दूसरा, अगर कोई ऑफर करता है तो आप बड़े हाथ जोड़ करके बड़े आराम से ये बात तो कही सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, या मैंने खा लिया है, या मेरे पास भी है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। तो बेहतर होगा कि दूसरे अगर कोई भोजन आपको आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए तो आप न करें, कम से कम एक सुरक्षा के रूप में इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आगे चलता हूं। आपका सफर दोस्तों शुरू हो चुका है और अब आप भोपाल पहुंचने वाले हैं। देखिए, या तो आप भोपाल उतरेंगे या आप हबीबगंज उतरेंगे, वो सारी जानकारियां आपको दे दी गई हैं। या फिर आप थोड़ा सा काम कीजिए कि आपकी बातचीत तो होती रहेगी यात्रियों से, आपको पता लग जाएगा कि अब स्टेशन आने में कितनी दूर है, आप सतर्क हो जाइए, लेकिन हड़बड़ाइए मत। गाड़ी भले 2 मिनट के लिए रुके, भले 5 मिनट के लिए रुके, लेकिन उतरने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जब गाड़ी की स्पीड कम हो जाए तो समझ लीजिए कि अब स्टेशन आने वाला है, तब आप लाइन में अपना सामान लेकर के लग जाए और बड़े इत्मीनान से उतरिए, धक्का मुक्का मत दीजिए। दूसरे धक्का मुक्की कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन आप अपने को संभालिए, बड़े आराम से आप उतर जाएंगे। राइट, उतरने के बाद देखिए, फिर आप सामान लेकर के बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद आप ऑटो लेंगे। सामान्यतः दोस्तों, ऑटो वालों की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक भाषा है, अपने तौर तरीके हैं। राइट, वहां आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। वो आपसे मनमाने दाम मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, आप उत्तेजित मत होइए। आप अपने दिमाग माइंड मेकअप कर लीजिए कि कितने में आपको जाना है, कितनी दूरी है, दूरी आपको लिखी गई है कि आप जहां रुक रहे हैं वो कितनी दूरी आपके स्टेशन से होगी, भोपाल से और या हबीबगंज से। तो आप बकायदे उनसे कहिए कि भैया इतना लोगे क्या? अगर वो नहीं लेने को तैयार है तो आप नाराज मत होइए कि क्या इतना कोई होता है, क्या इतना कोई मांगता है, क्या लूटोगे, क्या हमको नया समझ रखा है, क्या ये हमारे दिमाग में फिट हुए वाक्य हैं जो हम अक्सर कहने लगते हैं। नहीं, आप शांत रहिए, बोले कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में बताते हैं। बल्कि बेहतर होगा कि आपके पास अगर वक्त हो तो 10-15 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। होता क्या है कि जैसे ही पैसेंजर उतरते हैं तो इकट्ठे रेला आता है और उसका फायदा फिर ऑटो वाले उठाते हैं, और पैसेंजर्स को भी पता नहीं क्यों घर जाने की एकदम जल्दी लगी रहती है। अगर कोई रीजन ना हो तो थोड़ा सा अगर आप इत्मीनान रखें, थोड़ी सी बाद में जाएंगे तो देखिए कि वही ऑटो वाला जो मान लीजिए कि अभी आपसे 100 रुपए मांग रहा था, वो 75 रुपए मांगेगा, क्योंकि जो रेला था वो तो चला गया। उस मनोविज्ञान को वो लोग समझते हैं। बेहतर है कि हम भी इस मनोविज्ञान को समझें। आप बड़ी शालीनता से बात कीजिए, दो चार लोगों से बात कीजिए, आपकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए, टोन में भी शालीनता होनी चाहिए, और बकायदे बैठकर आप जहां भी आपको ठहराया गया है, जहां भी आपने अपनी व्यवस्था जो भी आपने किया है वहां पहुंच जाइए। हो सकता है कि आपको उसे ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, उसमें भी परेशान मत होइए। दिन का समय होगा, शाम का समय होगा, लोग आपको मिलेंगे, उनसे बकायदे बातचीत कीजिए, इत्मीनान से पूछिए कि ये जगह कहां है। उस जगह का देखिए आपको मोबाइल नंबर वगैरह लैंडलाइन नंबर दिया हुआ होगा, आप उनसे इत्मीनान के साथ बात कीजिए कि साहब मैं यहां पर हूं और कैसे पहुंचूं। इसके बाद जब आप पहुंच जाएंगे तो याद रखिए कि आप मैनेजर की टेबल पर जाएंगे। मित्रों, आपका जो व्यवहार है, मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूं, बार बार जोर दे रहा हूं कि बहुत शालीन होना चाहिए। हो सकता है कि आप अंदर से परेशान हो रहे हो, दिमाग में तनाव हो, झुंझलाहट भरी हो, आपको भूख भी लगी हो, आपको नींद भी आ रही हो, कोई बात नहीं, इनको संभालने की आदत डालिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के बाद ये तो रोजमर्रा की चीजें होंगी, आपको अभी से अपने आप को तैयार करना होगा, राइट। आप अपनी भाषा की शालीनता बनाए रखिए और बकायदे उनसे जाइए, आप बताइए कि आप क्या नाम है और आप इनकी तरफ से आपका रिजर्वेशन कराया गया है और ये मेरा आई कार्ड है, और हड़बड़ाइए मत, वहां भी मत हड़बड़ाइए। ये जो अंदर से हड़बड़ाने का एक जो इक्विपमेंट लगा हुआ है ना, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखेंगे कि जो मैनेजर है वो आपके साथ सहयोग करेंगे, ये मान करके चलिए, आप पूरी यात्रा में इस बात को महसूस करेंगे कि अगर आप अपना संतुलन बनाए रखेंगे तो सामने वाला चाहे जितना भी बदतमीजी कर रहा हो, बहुत जल्दी वो भी अपने संतुलन में आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि नहीं भैया ये उस तरह का व्यक्ति नहीं, हम इसको उत्तेजित नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तेजित करके तो वो फायदा उठाना चाहते हैं, उत्तेजित के बदले आप उत्तेजित हो जाइए, उसके हाथ में उत्तेजित होकर के आप अपने विरुद्ध एक हथियार थमा देते हैं, अब वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, और आप उत्तेजित होने के लिए नहीं आए हैं, आप अधिकारों की लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, आप कुछ पाने के लिए आए हैं, आपकी आंखों में एक सपना है, सिविल सर्वेंट बनने का सपना है, आप उस सपना को पूरा करने के लिए आए हैं, राइट। थोड़ी देर वेट करने के लिए वो कहते हैं, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, इसके बाद आप जाइए अपने कमरे में सेटल होइए, और फिर बाकी जानकारियां जो भी आपको लेनी है वो जानकारियां आप लीजिए। दोस्तों, मैं एक बात यहां विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो आपको ठहराने के लिए जगह दी गई है, चाहे आपने खुद किया है, मान करके चलिए कि वो एग्जिस्ट करती है, वो इस धरती पर है, और अगर आप भोपाल शहर में उतरे हैं तो वो जगह भोपाल शहर में ही है, परेशान मत होइए, और अनावश्यक रूप से फिर दूसरों को फोन मत कीजिए, आप वहीं कांटेक्ट कीजिए, वहां आपको मिलेगा। फोन नहीं उठाया जा रहा है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, अगर बिजी आ रहा है थोड़ी देर वेट कर लीजिए, होगा वो जगह होगी, किसी दूसरे से मत कांटेक्ट कीजिए। हाँ, जब एकदम हथियार डाल दें और कोई भी साधन नहीं मिल रहा है, कोई भी मतलब तरीका नहीं सूझ रहा है, तब फिर बात अलग है, फिर आप मदद लीजिए, लेकिन चीजों को आप अपने कंट्रोल में रखिए। अगर समस्याएं आती हैं तो उन्हें खुद सुलझाने की कोशिश कीजिए, और जैसे ही आप भोपाल स्टेशन पर उतर जाते हैं, अपने घर वालों को फोन करके सबसे पहले सूचित कीजिए कि मैं भोपाल स्टेशन पहुंच गया हूं, मैं भोपाल स्टेशन पहुंच गई हूं, और जब आप सेटल्ड हो जाए, जहां आप रुक रहे हैं वहां पहुंचने के बाद फिर एक बार फोन कर दीजिए कि मैं अपने जगह पर पहुंच गया हूं, मैं अपनी जगह पर पहुंच गई हूं, मैं सेटल्ड हो गई हूं, आप लोग किसी भी बात की चिंता न करें। और फिर इसके बाद आपके पास पूरा शेड्यूल्ड है कि कब क्लासेस शुरू होंगी, कहां आपको पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, सारी जानकारियां आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपके पास है, बल्कि बेहतर होगा कि जो ईमेल पर आपको सारी ये जानकारियां भेजी गई हैं उनका प्रिंट आप अपने पास ले लें। हार्ड कॉपी आपके पास होगी तो क्या है कि आप उसे देख सकेंगे, अदरवाइज आप बार बार मोबाइल में देखेंगे करेंगे तो हो सकता है कि आपको वहां लाइव नेट ना हो तो फिर दिक्कत जाएगी। उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिए, जरूरत के हिसाब से देख लीजिए, और वो आपके पास रिटर्न में होना भी चाहिए, और आपकी टेबल पर होगी तो एक दो दिन में तो फिर बाकी आप पूरे के पूरे सिस्टम में आ जाएंगे, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, जब आप कार्यक्रम वाले स्थान पर पहुंचेंगे वहां भी आपको अपनी भाषा की शालीनता बनाए रखनी है, पूछिए कहां क्लासेस लगे, वहां पहुंचने के बाद आपको कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जैसे बहुत से स्टूडेंट वहां मौजूद रहेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि यहां कुछ होने जा रहा है, आपको पता लग जाएगा, वहां आपको बिल्कुल भी जरा भी दिक्कत नहीं होगी ये पता लगाने में कि क्लासेस कहां लग रही हैं, और वहां पहुंचकर आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये कुछ सूचनाएं मुझे आप सबको देनी थी, या ये कह दी कि निर्देश देनी थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन निर्देशों का बिल्कुल क्लासरूम की तरह पालन करेंगे। क्योंकि यहां से ही आपकी तैयारी की सही शुरुआत होगी। तैयारी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारा माइंड, जब तक हम इसे ठीक ठाक नहीं रखेंगे, तब तक आप बताइए कि आप माइंड का ही तो काम करने आ रहे हैं। वही तो आपके लिए थैला है, वही तो आपका पात्र है जिसमें आपको चीजें भरकर ले जानी है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और अगर आप अपने किसी मित्र के साथ भी सफर कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मित्र के साथ ही मत लगे रहिए, है ना, दूसरों के साथ भी इंटरेक्शन कीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका स्वागत अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूं, और प्रत्यक्ष रूप से स्वागत तो फिर आप सबका मैं संडे को क्लास में करूंगा ही। आप सबको की यात्रा शुभ हो, इसके लिए हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ आप सबको दूसरी सूचनाएं दे दूं, मतलब फ्रेंड्स मतलब सभी जो स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनके अतिरिक्त। आपको मालूम है कि कल दशहरे की छुट्टी है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मित्रों। और साथ ही यह सूचना भी कि कल दशहरे की छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। लेकिन सैटरडे को कुछ चीजें जो आपको एज इट इज प्रोवाइड की जाती है वो आपको दी जाएंगी। सैटरडे को आपको बकायदे प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी, आपको कुरुक्षेत्र और योजना के चार आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको वीकली क्वेश्चन मिलेगा, आपको करंट आपको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, करंट कंटेंट आपको दिया जाएगा। स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उनके लिए होता है जो हमारे क्लास स्टूडेंट होते हैं। दोस्तों, ये थोड़ी सी सूचनाएं हैं। फ्रेंड्स, अब मैं न्यूज पर आता हूं। आज के मुख्य विषय के तहत, चूंकि वक्त बहुत कम है, हम लोग केवल सबरीमाला का जो मामला है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर है, आपने मी टू के तहत देखा कि किस तरह से जो पूर्व जर्नलिस्ट रहे हैं और हमारे विदेश राज्य मंत्री भी थे एमजे अकबर जी, उन पर लगातार मी टू के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा था, तो अब उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये मामला काफी जोर पकड़ता चला जा रहा है। और भारत सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है, राजनाथ सिंह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उसके अध्यक्ष हैं, और मेनका गांधी और जो हमारी रक्षा मंत्री हैं वो उनके मेंबर हैं। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अब इस मामले को थोड़ा सा देखेगा कि चूंकि संख्या मामलों की बढ़ रही है तो इसे किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो ये एक खबर है। अब जो सबरीमाला का जो मामला है मुख्य विषय, फ्रेंड्स आज के अखबारों में आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है कि कल सबरीमाला के जो पट है, मंदिर का जो पट है वो खोला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि नहीं, वहां महिलाओं के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। आपको मालूम है कि उसमें एक पर्टिकुलर एज की महिलाओं के लिए प्रवेश निषेध था। अब आप देखें कि इसको लेकर के बड़ी विचित्र सी दो स्थितियां हुई। स्थितियां यह हुई कि कुछ लोगों का एक समूह है वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करते हुए कह रहा है कि नहीं, यहां परंपरा अभी तक यही रही है कि महिलाएं प्रवेश नहीं करती हैं, पर्टिकुलर एज में वो प्रवेश नहीं करेंगी, तो वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और जो महिलाएं जा रही हैं प्रवेश करने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। मतलब कि एक दो ग्रुप बट गए हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऑनर कर रहे हैं, मान रहे हैं, दूसरा वो जो नहीं मान रहे हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि वहां की जो राज्य सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऑनर किया है, और ऑनर वो यही कर ऑनर करने के हिसाब से, और वहां का जो संस्थान है उन्होंने उनके उसके पट खोल दिए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना थोड़ा सा उतना आसान नहीं रह गया था। आपने देखा होगा कि इस तरह की स्थिति उस समय भी आई थी जब फिल्म रिलीज हो रही थी पद्मावत। पद्मावत फिल्म भी कुछ राज्यों ने रिलीज करने से मना कर दिया था, फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां फिर जो लोग इस फिल्म के रिलीज को लेकर के विरोध कर रहे थे उन्होंने इतने उग्र प्रदर्शन किए कि सिनेमा हॉल नहीं खुले और उन फिल्मों का प्रदर्शन नहीं हो सका। तो यहां आप एक टकराव की स्थिति देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो टकराव की स्थिति देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देता है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म का डिसीजन है, जो संविधान के दायरे में है। अब समाज इसे दो रूप में लेता है, समाज और राज्य। देखिए यहां पर आपको तीन वर्ग मानने पड़ेंगे, एक तो जुडिशरी हो गई जो डिसीजन दे रहा है, दूसरा समाज हो गया कि समाज उस का एक वर्ग उसे मानता है, समाज का एक वर्ग उसे नहीं मान रहा है। और तीसरा हो गया राज्य, कि राज्य उसके पक्ष में क्या कदम उठा रहा है, यानी कि राज्य समाज के साथ है या राज्य जुडिशरी के साथ है। तो ये कुछ इस तरह का वर्गीकरण मैंने जानबूझ करके किया है, और आप अब इनको लेकर के इनकी जो स्थितियां हैं, इनके जो विचार हैं और इनके जो एक्शन हैं, उनको लेकर के इस मुद्दे पर विचार करें। और डेफिनेटली इस पर अभी आर्टिकल्स भी आएंगे, कुछ एडिटोरियल कमेंट्स आए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आगे आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: संजय कुमार पटना बिहार से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, कविता वर्मा विशेषरगंज उत्तर प्रदेश से, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, सूर्य प्रकाश गौरव पाठक और ओंकार रविंद्र कुलकर्णी अमरावती महाराष्ट्र से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अंत में एक और सूचना, और वो आप जानते हैं कि रविवार से हमारी क्लासेस 15 दिन की शुरू हो रही है। डेफिनेटली उसमें मेरा एक एक क्षण जो क्लास के लिए स्टूडेंट आते हैं उनके साथ व्यतीत होता है, और मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर क्षणों में ये क्षण होते हैं। लेकिन आप सबको डेली ऑडियो लेक्चर सुनने को मिलता रहेगा, वो भी आप सुनेंगे। बस फर्क इतना ही होगा कि अभी तक आप डेली ऑडियो लेक्चर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड सुन रहे थे, अब आप करेंट अफेयर्स पर बेस्ड न सुन करके किन्हीं पर्टिकुलर पेपर के पर्टिकुलर टॉपिक्स पर सुनेंगे। और पिछली बार जब मैंने यह प्रयोग किया था इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के, तो आप सबने बहुत अच्छी और उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं दी थी, और आपकी उन्हीं प्रतिक्रियाओं को आधार बनाकर इस बार मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, इस बार में जो जनरल स्टडीज का आपका फोर्थ पेपर है, जो इंटीग्रिटी और एथिक्स का पेपर होता है, उसकी तैयारी के लिए कुछ गाइड कर सकूं। तो दोस्तों, अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी इस बात के लिए शुभकामनाएं चाहूंगा कि 15 दिन की हम लोगों की ये क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सार्थक तरीके से व्यतीत हो, और अब आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।